اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب دیکھیے کہ ولایت کی چند بنیادی چیزیں ہم نے پڑھ لی اور سمجھ بھی لیں, اور بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ ولایت کا تعلق نہ تو چلوں سے ہے اور نہ اس کے اندر کوئی جوگی پننا ہے اور نہ کشف ہے نہ الہام ہے اور نہ کچھ اس قسم کی باتیں جو آج کے دور میں عموماً عام کر دی جاتی ہیں, اس سوچ کے ساتھ کہ اگر آپ کو ولی بننا ہے تو یہ ہو گئی. پھر اس سے کچھ اتنی مختلف قسم کی ٹرمز بن جاتی ہیں. اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو کچھ نام آپ نے سنے ہوں گے. تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی کہ آج کے دور کی ولایت کیسے بنی صحابہ کرام کے دور سے. سب سے پہلے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور لیں تو آپ کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جن میں یہ ساری خوبیاں تھیں جس کا یہاں تذکرہ, الذین آمنوا اور کانوا یتقون, اور جن کی طبیعتوں میں زہد بھی تھا اور تقویٰ بھی تھا. صحابہ کرام چونکہ ہر کام کو سنت کی روشنی میں کرنے کے عادی تھے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. جس طرح دنیاوی زندگی سنت سے کٹتی ہے نا, تو غیر مسلموں کے رسم و رواج ہماری زندگی میں ایسے ہی آ جاتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے. اسی طرح جب سنت کی مالا گلے سے اترتی ہے دین کے نام پہ, تو دین کے ناطے سے بھی انسان اپنی مرضی کا دیندار بن جاتا ہے. پہلی صدی اور دوسری صدی ہجری میں ایسے تمام لوگ جو بہت زیادہ تقویٰ والے اور عبادت کرنے والے تھے, ان کو زہاد اور صالحین کا نام دیا گیا. یعنی سب سے پہلے اولیاء کرام کے نام کے اندر جو لوگوں کے ذہنوں میں ہسٹری آئی تھی, اس میں سب سے پہلے ایسے لوگوں کو زاہد کہا جاتا تھا. آپ نے سنا ہوگا پرانے اشعار ہیں, کچھ نام نہیں یاد زیادہ, لیکن پرانی پوئٹری دیکھیں اردو شاعری تو اس میں آپ کو زہد اور زاہد کا لفظ ملے گا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح ان کو صالحین کہا جاتا تھا. اس کے بعد جب تیسری صدی شروع ہوئی, مسلمانوں پر یونانی اور ہندی فلسفے کے اثرات پڑے. وہ لوگ جو عبادت کی طرف بہت مائل تھے نا, ان کے اندر اب ترک دنیا اور رہبانیت دونوں اور بھی مل گئیں. اس دور میں جب یہ چیزیں شامل ہوئیں تو زاہدین اور صالحین کو اولیاء اللہ کہا جانے لگا. اس وقت یہ موضوع, یہ نام صرف ان لوگوں کے لیے خاص تھا جو ریاستیں اور چلہ کشیاں کریں اور باقاعدہ کسی شیخ یا ولی کی بیعت کے رشتے میں منسلک ہوں اور ان سے کرامات کا ظہور ہو. پھر اس طبقے میں وحدت الوجود, وحدت الشہود اور حلول جیسے غیر اسلامی عقائد داخل ہو گئے, اور ولی کی ولایت کا معیار یہ قرار پایا کہ جس کسی سے کرامات کا ظہور جتنا زیادہ ہو وہ اسی درجے کا ولی ہے. پھر ان لوگوں میں سے بعض نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ہمیں براہ راست اللہ تعالیٰ سے خبریں ملتی ہیں نعوذ باللہ, اور ہمیں رسول کی ضرورت نہیں. بعض نے شریعت کو ہڈیاں اور اپنے دین طریقت کو اصل مغز قرار دیا اور ولایت کے ایک باقاعدہ باطنی نظام کی داغ بیل رکھ دی. ان میں پیری مریدی لازمی قرار دی گئی. یہ لوگ اپنے اس مخصوص طبقے کو ہی برتر اور اولیاء اللہ قرار دینے لگے, اور ان اولیاء اللہ کے علم غیب تصرف, علم غیب تو سمجھتے ہیں, تصرف کا مطلب یہ کہ ان کا ہاتھ ہے اللہ کے ساتھ ان کاموں کو کرنے میں, تصرف اور ہیبت سے لوگوں کو ڈرایا جانے لگا, اور ایسے نظریات مسلمانوں میں خوب مطلب مشہور کیے گئے جن کی کوئی شرعی نقطۂ نظر سے بنیاد نہیں تھی. تو یاد رکھیے, آگے جا کے انشاءاللہ ہم سورۃ الحدید میں رحمانیت کی بہت زیادہ لمبی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ فیل کریں گے کہ جو مقام کرسچینٹی میں رحمانیت کا ہے نا, راہب, وہی آج کے دور میں کچھ خاص سوچ رکھنے والے مسلمانوں نے اولیاء کرام کو دیا ہوا ہے. حالانکہ اولیاء کرام تو کون ہے جو ایمان سے بات شروع کر کے تقویٰ کی آخری سیڑھیوں پہ ہیں, اور وہ پانچ چیزیں جو ہم نے دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اللہ کی شریعت کے دائروں میں رہتے ہوئے عبادات بھی کرتے ہیں, زندگی کے معاملات بھی نبھاتے ہیں. وہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہوتے کہ بس شیخ کا دیدار کر لو تو کافی ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک سوچ کی کہ فلاں کا دیدار ہو جائے تو میرا صبح اچھا ہوگی. پھر آپ دیکھیں گے کہ جب سے یہ سوچ بڑھی, تصویر کا تصور بن گیا. کچھ مذاہب ہیں, ایون مسلمانوں کے کچھ فرقے, ان میں تصویر شیخ کا بڑا تصور ہے. کچھ گھروں میں جائیں تو بڑی بڑی بزرگوں کی تصویریں ہوتی ہیں. ایک ایسی جگہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے جب پوچھا تو کہنے کہ یہ ہمارے شیخ کی تصویر ہے. تو بہرحال میری عادت نہیں ہے بحث کی, جو بھی بات اینڈ پہ کھلی. صبح جانے سے پہلے میاں صاحب اس تصویر کے آگے دعائیں کر کے مانگ کے جاتے ہوئے اور آتے ہوئے, اور یقین کریں کہ ایک ہماری استاد ہیں, انہوں نے خود اپنے تجربے سے بتایا کہ فیصل آباد میں گھر میں جب وہ گئیں, بہت بڑے لوگ تھے کوئی, یعنی لائک وڈیرے ٹائپ, تو کہتی کہ ان کے گھر کے نیچے پورا بیسمنٹ ہے, तो उधर उन्होंने कहा पूरे बेसमेंट की छत के ऊपर उन्होंने नबी सल्लम का नक्श बनाया हुआ जूते का नक्शे नालाइन। तो उन बकौल उनके कि सुबह कामों पे जाने आने से पहले हम नबी के जूते के नीचे खड़े होकर दुआएं मांग के जाते हैं। इन सारी चीज़ों ने क्या किया आप देखें, आप इसके अंदर कोई भी बात कहें, मोहब्बत है, कुछ भी है, लेकिन ऐसे सारे शॉर्टकट्स बंदे को अमल से दूर कर लेते हैं। कुछ तो कर रहे हैं ना, चलो तज़ीम ही तो कर रहे हैं। शायद अल्लाह हमें जूते के सदके बख्श दे, शायद अल्लाह हमें इन बुज़ुर्ग की खिदमत करने पे बख्श दे। शेख की तस्वीर देखी, उनसे बात की, फिर आगे बैत का सिलसिला शुरू हो गया। तो एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है सब के लिए कि कुरान पढ़ते वक्त अब जो सोच हमें सीरत से मिल रही है ना, ये असल दीन है। अगर सहाबा अपने आप को वली कहते थे, अगर अबू बकर के गले में मनकों की मादला थी हम भी पहन लेंगे, वो चोगा पहन के फिरते थे ठीक है, वो भी अल्लाहू अल्लाहू करते थे, हम भी करेंगे, क्योंकि उनसे बड़ा वली कौन हो सकता कि जिनके लिए अल्लाह सुबहाना तला ने ये बात रखी। तो बहरहाल यहाँ बिशारतों की भी बात हमने कर ली कि अल्लाह तला उनको दुनिया और आखिरत में बिशारतें देता है, और बहुत बड़ी हकीकत है। देखिए कि आखिरत में जो कुछ जाके पता चलना है ना, मोमिन को दुनिया में पता चल जाता है। बिल्कुल उस तालिब इल्म की तरह कि जो पूरे अच्छे सवालात करके आता है तो अंदर चुपके चुपके मुस्कुरा रहा होता है कि मुझे पता है कि मेरा एक भी नंबर नहीं कटेगा, 100 में से 100 आएंगे, क्योंकि मेरे 10 के 10 सवाल ठीक हैं। घर आके और भी ज़रा एहतियात के तहत वो जाके बुक से खोल के देख लेता है और कहता है कि हाँ अल्लाह का शुक्र है मेरा आज एक भी सवाल गलत नहीं हुआ। तो बिल्कुल इसी तरह से ऐसे लोग जो होते हैं वो दुनिया में खुशियाँ पाते हैं। ये जो ला खौफ़न अलैहिम वला हुम यहज़नून है ना, ये असल में किस चीज़ का है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। दो लफ्ज़ है, एक है खौफ और एक है हुज़न। खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है और हुज़न यानी गम का ताल्लुक माजी से होता है। क्या मतलब है, ये बिल्कुल बेहिस लोग हो जाते हैं या खुशी प्रूफ लोग हो जाते हैं या गम प्रूफ लोग होते हैं? नहीं, मतलब क्या है कि चूंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा खौफी के साथ गुजारी होती है, इसलिए क़यामत की हौलनाकियों का इतना खौफ इन पर नहीं होगा जिस तरह दूसरों को होगा, बल्कि वह अपने ईमान और तकवा की बुनियाद पर अल्लाह की रहमत और फजल के उम्मीदवार होंगे। ये अल्लाह से हुस्ने जन रखते हैं। इसी तरह दुनिया में वो जो कुछ छोड़ गए होंगे या दुनिया की लज्जतें इन्हें हासिल ना हो सकी, इन पर कोई हुस्न व मलाल नहीं होगा। छोटी छोटी बातों पे होके नहीं भरते, हाँ ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो एक मतलब फिर ला खौफ़न अलैहिम वला हुम यहज़नून का क्या है कि दुनिया में जिन चीज़ों को वो तलब करते थे वो नहीं मिली तो कोई बात नहीं, गम फिर भी कोई नहीं। मांगते तो रहते हैं लेकिन कहते हैं रदीतु बिल्लाहि रब्बन, मतलब देखिए कि अल्लाह ने किसी को औलाद नहीं दी। अब एक है रो धो के उसी में अपनी सेहत भी गंवा दे और उसी में अपने ताल्लुकात और भी दूसरों से बिगाड़ ले, और दूसरा क्या है रदीतु बिल्लाहि रब्बन, क्या हो गया, बड़ी बात थोड़ी है। तो अल्लाह से राजी रहने वाला अल्लाह का वली होता है, अल्लाह की बाँट पे खुश हैं। फिर एक और इसकी तफसीर की गई है खौफ और गम से निजात की कि इनके दिलों में कदूरत नहीं होती, दूसरे मुसलमानों की नेमतों को देखकर जलते नहीं हैं, इनके दिल में कोई ऐसे नेगेटिव जज्बात दूसरों के लिए नहीं होते। अपने से आला नेमत वाले को देख के कहते हैं ये अल्लाह की रजा है, और अपने से कम नेमत वाले को देख के अकड़ते नहीं बल्कि तकब्बुर और फूलते फालते नहीं बल्कि कहते हैं ये अल्लाह का फैसला है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कहते हैं कि असल में तो जीते ये हैं। मैं सारी बातों को समेट के आखिरी जुमलों में अगली आयत पे जाके ये ज़रूर कहूँगी कि असल ज़िंदगी औलिया कराम की है। आप और मैं हम सब वली बन सकते हैं, शर्त क्या है कि अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, इसके बगैर तो दुनिया में सिर्फ बेकार है। सूरह तौबा की आयत 52 में हम बिशारतों की बात पढ़ के आए थे ना, ग़ज़वे तबूक के सिलसिले में अल्लाह ताला ने क्या बात बताई थी मोमिनों के दिल की हालत कि हल तरब्बसून बिना इल्ला इहदल हुस्नैन, हमारे लिए तो दो अच्छाइयों के सिवा तीसरी का तसव्वुर ही नहीं है। या जाएंगे कामयाब हो के फातह बन के आ जाएंगे, माल गनीमत समेटेंगे, या शहीद हो के अल्लाह के पास पहुँच जाएंगे। तो यही है मोमिन का हाल, कोई गम नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। सूरह तौबा 51 में भी हमने पढ़ा था कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, घबराने की क्या बात है, वो अल्लाह हमारा दोस्त है और अगर दोस्त की तरफ से कोई तकलीफ आ भी जाए तो सारा आंखों पे अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि उसकी तरफ से आए हुए गम तकलीफ़ें भी खुशी लगती हैं। जैसे बच्चे सताते भी हैं ना तब भी माओं के दिल में खुशी ज़रूर होती है कि चलो हैं तो मुझे सता रहे हैं, ना होते तो क्या होता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ला तब्दील अली कलिमात इल्ला, अल्लाह की बातें नहीं बदलती। मुराद ये कि पहले दौर से लेके आखिरी दौर में अल्लाह सुबहाना ताला का असूल एक है, ज़ालिक हुवल फौज़ुल अज़ीम, اور یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ ہم ایسی کامیابیوں پہ ڈال دے. آیت 65 میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حالتیں ہیں, یعنی اب یہاں کہہ سکتے ہیں کہ ولی اللہ کو پتھر دل لوگ نہیں ہوتے, ایموشن فری لوگ نہیں ہوتے, بلکہ ان کو دکھ سکھ ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہر حال میں خوش ہوتے ہیں. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی باتیں کہتے ہوئے کئی سال ہو گئے تھے, وہی مضمون جہاں آگے آ رہا ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ, اور اے نبی ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں. کن کی باتیں؟ جو گھر بیٹھ کے نبی کے خلاف باتیں کرتے تھے, پروپیگنڈے, نگیٹیوٹی, آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھر, پیچھے بیٹھ کے نبی کو ستاتے تھے اور باتیں پہنچ جاتی تھیں تو دکھ ہوتا تھا. یعنی اللہ کے نبی کے اندر انسانی جذبات تھے, تو آپ کو ان کی باتیں سن کر کیا ہوتا تھا؟ دکھ. ذرا اس لفظ یحزن کا کو ہائی لائٹ کریں. اگر یہاں یہ لفظ ہوتا ولا یغضبک, اور آپ کو غضب میں نہ ڈالیں ان کی باتیں, تو کیا بات سمجھ آئی ہے؟ کہ نہ سمجھ لوگوں کی, دین سے دور لوگوں کی باتیں, اور نگیٹیوٹی اور شک اور شبے, اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جب لوگ دینداروں پہ باتیں کرتے ہیں تو اس کو اس پہ غصے میں نہیں آنا چاہیے. ہاں, دکھ ہونا تو انسان کی بات ہے. یعنی سچا دائی دین لوگوں کی باتوں پہ دکھی تو ہو سکتا ہے, غصے میں نہیں آ سکتا, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ بچے ہیں, ان کو حقیقت نہیں پتہ. اور دوسرا ایک ڈر کیا ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے, کہ ہائے میری بےزتی کر دی. اور یاد رکھیے, جب آپ کی میری کوئی بےعزتی کرتا ہے نا عملی زندگی میں, مثال ہے کہ ہم اپنے خاندانوں میں, اگر بالفرض خاندان میں میری بےعزتی ہوئی تو مجھے کیا خوف آئے گا؟ ہائے میں بےعزت ہو گئی, پھر میرے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے, ہائے لوگ میری دعوت میں آئیں گے. یعنی میری ذات کو نقصان ہوتا ہے, لوگ مجھے دعوت میں نہیں بلائیں گے, کچھ بھی سوان مجھے باتیں کریں گی میری دوستیں. لیکن جب کسی دین والے کو کوئی باتیں کرتا ہے تو ایک سچا ولی اللہ, ایک اللہ سے محبت کرنے والا صرف اس بات کا غم کرتا ہے کہ میری مٹی میں ڈالو, عزت میری پہلے بھی کون سی ہے, لیکن میری اس بے عزتی کی بنیاد پہ دین پہ حرف آ جائے گا. بات سمجھ لیں. دیکھیے, دین سکھانے والے پہ جب کوئی بات کرتا ہے تو لا محالہ لوگ اس کو چھوڑے نہ چھوڑے دین کو چھوڑ دیتے ہیں, ایسے ہی کہ چھوڑو جی, ہمیں ان سے نہیں سیکھنا, ہمیں ان کی بات نہیں سننی, ہمیں اس رسول کو نہیں ماننا. تو نقصان کس کا ہوا؟ نہ ماننے والے کا. اور حرج کس پہ پڑا؟ دین پہ پڑا. تو یہ سوچ کہ ہمارے اوپر اللہ ایسی باتیں نہ آئیں جو کہ لوگوں کو دین سے دور کریں. اگلے سبق میں یہی بات آگے ذرا ڈیٹیل سے بھی آنے والی ہے کہ اللہ ہماری ذات کو فتنہ نہ بنانا. تو ہمیشہ اپنے لیے یہ دعا کریں. اور یہاں امام بخاری کا وہ واقعہ صرف ایک ہے, ریفرنس کے لیے لکھ لیں, جو کئی دفعہ سنایا ہے, کہ صرف انہوں نے اس سوچ سے 1000 اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں ڈال دی تھی کہ اگر میرے پاس یہ تھیلی نکل آئی جو میری اپنی ہے, لوگوں کو کیا پتا یہ کس کا مال ہے, لیکن وہ یہ سوچیں گے کہ اب امام بخاری نے یہ تھیلی اس شخص سے چوری کی ہے, حالانکہ وہ سراسر ان کی تھی اور چوری نہیں تھی, لیکن اس وقت سرکمسٹانسز ایسے لگ رہے تھے کیونکہ اس شخص کی نیت خراب ہو گئی, تو انہوں نے وہ 1000 اشرفیاں قربان کر دی لیکن اپنے اوپر نام نہیں آنے دیا. تو دین کی عزت بچانے کے لیے بعض دفعہ وہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں جس میں اللہ کی نظروں میں بندہ 100% سرخرو ہوتا ہے, لیکن عام لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کیوں فکر کرتے ہیں, ان کی باتیں آپ کی یا دین کی عزت پہ حرف ڈالیں گی؟ نہیں. ان العزت للہ جمیعا, عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. ہو السمیع العلیم, وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ ہے بندہ مومن کے دل کی حالت. چلو تم جو کہتے ہو اللہ کو تو پتہ ہے, میں کیا صفائی پیش کروں. دیکھیے, ایک صورت ہوتی ہے آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی آپ پہ یا آپ کے دین پہ یا آپ کے فرقے پہ یا آپ کی مذہب پہ کوئی بات کر رہا ہے, اور آپ چل پڑے سر پہ دوپٹہ رکھ کے اس سے صفائیاں پیش کرنے یا لڑنے جھگڑنے یا کچھ اور کرنے, کر کیا لیں گے آپ, کتنا کو بولیں گے؟ بلکہ میں نے دیکھا جتنا ہم بولتے ہیں اتنی بات خراب کرتے ہیں. کئی لوگ ہیں جو اپنے مسئلے صرف اس لیے نہیں سلجھا پاتے کہ ان کو اپنی صفائی پیش کرنی کوئی نہیں آتی. آگے سورہ مریم میں بھی اس پہ بات ہوگی. بی بی مریم پہ الزام لگ رہا ہے, تہمت لگ رہی ہے کہ بیٹا کہاں سے آ گیا. ہم ہوتے تو کہتے ہیں بی مریم ذرا خوب بولنا, میں تو اتنی سچی, میں تو اتنی پاک, اور اللہ نے ایک بات سنائی کہ صرف یہ کہہ دینا انی نظرت للرحمن صوما, کہ آج میں نے رحمان کے لیے چپ کا روزہ رکھا ہے, فلن اکلم, میں نہیں تم سے بات کروں گی. اور بی بی مریم چپ رہی تو اللہ نے کہا بول عیسیٰ تو بول, انی عبداللہ. تو یاد رکھیے, جو خود اپنی صفائیاں پیش نہیں کرتے, سمیع العلیم ان کی صفائیوں کے حالات پیش کرتا ہے. ابھی آگے صورت آ رہی ہے سورہ یوسف, دیکھیے گا حضرت یوسف کی بے گناہی کیسے بولی. تو اپنا دفاع کرنا چھوڑ دیں, आपकी अना हर्ट होती है, अगर आपके अंदर ईगो है, अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो लोग आपके खिलाफ बातें करें, सब्र का घूंट पड़े, रो लें, दुख कर लें, दुआ कर लें और अल्लाह से कि अल्लाह तू अब इस सफाई को कर दे, खुद उसके दिल से मेरी बुराई निकाल दे, आप देखिएगा घरों का सुकून आ जाएगा वापस। और अलीम से ये पता चलता है कि किसी को जो बात ना पता चले वो अल्लाह को पता है। वो कहते हैं ना कि सारा बाग जाने तो ये कैसे है कि माली ना जाने, अल्लाह को ना बताओ कि मेरे दिल में क्या है। अला यालमु मन खलक, सूरत मुल्क में कहता है क्या मैं नहीं जानूंगा जिसने तुमको पैदा किया। जैसे माँ अपने बच्चे के चेहरे को पढ़ते हुए कहती है तू मुझसे छुपाती है, मुझे पता है तेरे दिल में कुछ है, मैं नहीं जानूंगी, मैं तो तेरी माँ हूँ, बता क्या गम है तुझे। तो जब ऊपर से तसलियाँ आ जाएं तो नीचे से तसलियों की जरूरत भी नहीं होती। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा पे तोहमत लगी थी, चुप करके अंदर बैठ गई थी, कोई मदीने की गलियों में जा जाके लोगों को किससे नहीं सुनाए, हमारे तो फ़ोन की सख्ती आ जाती है साथ कानों की सख्ती आ जाती है, वल्लाह ही कान तपने लगते हैं, बाज़ लोगों का फ़ोन गर्म हो जाता है क्योंकि अंदर की गर्मी उस पर भी आती होगी, और रोते हैं कभी धोते हैं फिर कहते हैं उसको भी पूछ लूँ, किसी को ना पूछे, अंदर पूछे सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। सच है तो चुपके से इस्लाह कर लें, इस्तगफार कर लें कि अल्लाह ये बात है मेरी छुप नहीं सकी, और अगर अगला गलत कह रहा है तो अल्लाह से कह दे अल्लाह तो उसका दिल साफ कर दे और अपने काम में लग दे। ये है फला यहज़ुन का कौलुहुम। आयत 66। अब यहाँ से आगे फिर अल्लाह सुबहान तआला के साथ ताल्लुक़ की बात है। अला इन्ना लिल्लाहि मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, आगाह हो जो अल्लाह ही के ममलूक हैं जो कुछ भी आसमानों और ज़मीन में है, यानी ज़मीन व आसमान की बड़ी बड़ी मखलूकें, सब कुछ अल्लाह के आगे बंदे हैं, गुलाम हैं, कितनी बड़ी ज़ात है वो। और मन फिल अर्थ की लिस्ट आप पीछे बना चुके हैं, अब दोबारा खुद बना लें, इस मन के नीचे बस एक छोटी सी एरो लगा के मैं लिख लीजिए, अना आई एम माई सेल्फ, मैं अल्लाह की हूँ, इन्नी लिल्ला, इसी को मौतों की सूरत में हम इन्ना लिल्ला ही कहते हैं ना। अगर यकीन करें हमें ये पता चल जाए ना कि मैं अल्लाह की हूँ, तो फिर आप देखेंगे कैसे तब्दीली आती है। फिर उसके नीचे एक छोटा सा और एरो डाल के लिखे मेरे बच्चे अल्लाह के हैं, फिर अपने आप से कहिए मेरे बच्चे अल्लाह के हैं, जैसे बीबी मरियम की माँ ने अल्लाह को बेटी दे दी थी कि इन्नी नज़र तो लक माफ़ी बतनी मुहर्रा, फिर इसी तरह एक छोटा सा एरो और उसी मन के नीचे डालिए मेरा माल। इसी तरह बंदा मोमिन की पूरी ज़िंदगी अल्लाह की है, और बन के तो देखिए कभी आपने किसी बड़े इंसान से शराकत दारी तो की हो। मैं सिर्फ समझाने के लिए मिसाल देती हूँ आपको, आप देखिए कि आपके से 1 लाख रुपए है जिससे कुछ नहीं हो सकता, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो करोड़ों का बिजनेस करती है, वो शेयर्स खरीदती है, कहती है आओ डालो, आप अपना 1 लाख सिर्फ उसमें डालते हैं जो शायद उनका 1% बनता हो, नाम तो आपका भी आ गया ना उस कंपनी में, चाहे आपको उसमें 1% प्रॉफिट मिल रहा है लेकिन उस कंपनी के शेयरर्स में आपका नाम आ गया, लोग बड़े खुश होते हैं, कहते हैं फलां कंपनी में कैसे तुम्हारा कारोबार है, फलां से हमारी बिजनेस डील है। तब एक कंपनी वो अमेजोन है या कोई भी है, आप उसको अल्लाह पे रखिए, अल्लाह से अपनी भाई वाली डाला करें, अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में, मादी और जिस्मानी नफसानी ख्वाहिशात हर चीज़ में अल्लाह का हिस्सा डाल के तो देखें, फिर जो बरकत आपकी ज़िंदगी में आएगी उसका आप कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लेकिन लोगों का हाल क्या है, वमा यत्तबियुल्लज़ीन यदउन मिन दूनिल्लाहि शुरका, और ये लोग जो अल्लाह के अलावा इसके शरीकों को पुकारते, वो किसी चीज़ का इत्तबा नहीं कर रहे, तो फिर किसका कर रहे हैं, जवाब आता है यत्तबिउन इल्ला ज़न, वो तो सिर्फ ज़न की पैरवी कर रहे हैं, तखमीने अंदाजे गैस वर्क है, व इन्हुम इल्ला यखरुसून, और वो सिर्फ अटकल से काम लेते हैं। बिल्कुल वही बात जो पीछे भी गुजरी कि अल्लाह के माँ सिवा के साथ ताल्लुक़ रखने वाला वो असल में उस बुत को नहीं पूज रहा होता, वो खुद को पूज रहा होता है। जो मुशरिक होते हैं ना वो अपनी पसंद के माबूद लेते हैं, और ऐसे भी लोग हैं, आगे हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला सूरत फुरकान में आएगा, क्या फ़रई तम इतखज़ इलाहहु हवाहु, तो उसकी शान नज़ुल में आता है कि मक्का में एक शख्स था कुछ दिन एक बुत को पूजता, अब रंग रौनक खुशी ऐसे चमकते हुए बुत होते हैं, थोड़े दिन बाद उसका दिल उससे भर जाता, उसको उठा के काबे में रखा था, एक और खूबसूरत सी गुड़िया उठा के ले आता, उसके बारे में आयत उतरी थी ये इनको नहीं पूज रहा अपने नफ्स को पूज रहा। आज भी देख लीजिए कोई कहता है मैं लक्ष्मी देवी को पूजती हूँ, कोई कहता है कि मैं कृष्णा की हूँ, कोई कहता है मैं हनुमान को मानता हूँ, ये इनके अपने गुमान है, सारे एक जैसे हैं। यखरुसून, और यखरुसून का जो लफ्ज़ है ना खार और स्वाद है, खरसा कहते हैं दरख्तों पर लगे हुए फल का अंदाज़ा करना, अरब लोगों में इतनी ज्यादा समझ थी कि दरख्तों पे फल को गिन के अंदाजा लगा लेते थे कि इस साल फसल कितनी आएगी। इसी तरह से फिर वो फसलों पे जो उशर होता है वो भी देते थे, ज़कात भी इसी तरह वसूल होती थी। तो अब उसमें क्या होता है कि 100% बात तो नहीं ठीक हो सकती ना, 90% ठीक भी हो सकती है और बाज़ दफ़ा 10% गलत भी हो जाती है। तो यहाँ मुराद क्या है कि हर मुशरिक जो अल्लाह के मासिवा दूसरों को लेके चलता है वो क्या है, वो सिर्फ अपनी अंदाजे हैं। नहीं, आई थिंक ये मुझे बख्शवा लेंगे, आई थिंक इनका पल्लू पकड़ूंगी तो मैं बच जाऊंगी, मेरा ख्याल है बाबा जी की अल्लाह के पास बहुत चलती है, मेरा ख्याल है कि ये बाबा जी जो है ये मेरी सिफारिश करवा देंगे। इस किस्म की बातें जो थी वो लोगों को बहुत ही ज्यादा बद कर देती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इनकी नज़र कमजोर है, इनको बाबा जी की करामत तो दिखती है, इनको बाबा जी का सारी रात खड़ा होना दिखता है, चलो इनको पता है कि बाबा जी सारी रात नहीं सोते, तो इनको अल्लाह नहीं दिखता कि ला ताखुज़ु हुसीना तुम वला नौम, और अल हय्युल क़य्यूम नहीं दिखता। तो अल्लाह कहते हैं इनको फिर दिखाओ मैंने क्या पैदा किया। कुरान में आप देखेंगे जहाँ भी शिर्क की बात है ना, और इस तरह के शिर्क की, उसके फ़ौरन बाद कायनात की निशानी है कि अल्लाह के शाहकार देखो, हुवल्लज़ी जअल लकुम अल-लैला लितस्कुनू फीह, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो, वन्नहारा मुबसिरा, और दिन को रोशन बना दिया। अल्लाह सुब्हान तआला की बांट देखिए, रात सुकून के लिए, दिन मुबसिरा काम के लिए खुला। देखो यही मजमून आगे सूरत अम्मा या तसालून में भी हम पढ़ेंगे, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, के रात को लिबास बना दिया। ऐसे नहीं होता रात में सारी ही चीज़ों पे काली चादर चली गई, कुछ नहीं दिखता। कभी आपको रात के वक्त में किसी रोड से बाहर से घर में आना पड़े तो आप देखें ऐसे लगता है पूरी कायनात के ऊपर एक चादर बिछ गई है, और सुबह ऐसे लगता है कि वो काला कंबल उठता है, फिर हम सब वैसे के वैसे खुलते हैं, और फिर आप देखिए उसके साथ फिर हमारी फीलिंग्स भी बदल जाती हैं। जो रात का मूड होता है वो दिन का नहीं होता, और जो दिन का मूड है वो रात को नहीं होता। और जब इंसान फितरत से हटता है तो उसकी रातें रोशन और दिन आधे आधे सो सो के। यहाँ तो शायद ना समझ सके, अपने मुल्कों में जाके देख लीजिए, सूरज तो 6 बजे निकल आता है, हम बिस्तर से 12 बजे भी नहीं निकलते, और खूब गहरे कंबल डाल के ब्लैंकेट्स और पर्दों के अंदर सोते हैं, तो वक्त से बरकत चली जाती है। ये जो अक्सर ही लोग, आप भी खास तौर पर नरीन आंटी शेयर करती हैं, कोर्स के बाद बरकत इनकी ज़िंदगी में, उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वह नहारा मुबसरा। अब इनके दिन का आगाज़ 5-6 बजे हो रहा है, पहले शायद ये कहती हैं 11-12 बजे होता था। तो जब इतना वक्त ही गुजर गया तो बाकी वक्त में बरकत कहाँ रहेगी। तो इससे फितरत का इशारा भी है कि जब हम सूरज चांद के साथ कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं तो हमारी तबीयत में भी सरूर आता है, और हमारे काम भी अच्छी तरह से हो जाते हैं, और वो काम अच्छे तरीके से हम करके अल्लाह सुब्हान ताला की मदद भी हासिल करते हैं। और बहुत देर तक जागना और देर तक सोना ये इंसान की सेहत के लिए भी खिलाफ है। आपको पता है कि रात का जो बिल्कुल इब्तदाई वक्त होता है, मगरिब के बाद, इशा के इब्तदाई वक्त के फौरन बाद, रिवायात में आता है कि एक हवा चलती है जिसमें बोझ होता है, ह्यूमिडिटी कह लें आज की ज़ुबान में, जब वो इंसानी तबीयतों पे आती है ना तो तबीयत बोझल होती है, और अगर उस वक़्त इंसान सो जाए तो उसको बहुत अच्छी नींद आएगी, सारे जिस्म की थकन दूर हो जाएगी, ये सूरह नहल में भी हम पढ़ेंगे, और उसको नींद सुकून की आएगी, चंद घंटे की नींद उसके सारे जिस्म की थकन दूर कर देगी। लेकिन अगर उस वक्त हम नहीं सोते, रिजिस्ट करते हैं ना, खाने पका रहे हैं, दावतों में ये वो, तो वो हवा चली जाती है, और उसके बाद रात बिस्तर में पलटो, इधर करो उधर करो, तो नींद नहीं आती। और ये चीज़ आपने अपने घर के बुज़ुर्गों से देखी होगी, हमारी नानी अक्सर ये जुमला बोलती थी, मेरी नींद का वक़्त चला गया। वो उनका एक सेट रूटीन थी अपने हिसाब से, नमाज से पहले जाए नमाज पे बैठी होती थी, और इशा की नमाज़ पढ़नी, फिर बैठे हुए ही सारी दुआएं पढ़नी, किताबें पढ़नी, और दूध की प्याली उनकी बहुओं ने, किसी ने उनके लिए रखी होनी, दूध पीना और सीधा बिस्तर में। कभी बाकी मामू बच्चे सारे होते ना मिलने आ गए नानी को, तो उनके कमरे में आ जाना, तो बैठ जाती थी, फिर घंटे डेढ़ के बाद जब सबने उठना तो फिर वो अगले दिन सुबह यही कहती थी, तुसी राती आके मेरी नींद ख़राब करती, मैं सारी रात नहीं सो सकी। ये फितरत पे थे पहले लोग, क्यों सूरज की तरह सुबह उठ के बांके बांके फिरते थे बड़े घर के। यकीन करें सिर्फ इसलिए यंग्स का दिल नहीं लगता, मैं खुद बता सकती हूँ आपको कि हम जब बचपन में छुट्टियों में नानी के घर जाते थे, हमें सबसे बड़ा रोग क्या होता था कि नाना वो नानी मैंने सुबह उठ सोने नहीं देना, सारे घर के पर्दे खोल दिए, खिड़कियाँ खोल दी, बिस्तरे खोल दिए, लाइटें उतार दी, तो हम कहाँ सोएंगे, छुपते फिरते थे, उनके कमरे से निकलना तो किसी कोने में, थोड़ी देर में उन्होंने उसकी खिड़कियां खोलने आ जाना, यकीन करें। और नाश्ता मिलना है, सबको एक साथ मिल जाना है। ये आज वाले लाड थोड़ी थे कि बच्चे उठते जाएं और माएँ खैर से पकाती जाएं, सारा दिन किचन भी बिजी, अम्मा भी बिजी। तो ये सारी चीज़ों पे अमल करके देखें, आज भी वही बरकत है ज़िंदगी में, जो उस दौर में थी वही थी। तो अल्लाह ताला हमें इसकी खैर समेटने वाला बना दे। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयात लिक़ौमी यस्मऊन, और यकीनन इसमें निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो सुनते हों। अब देखिए जो बात मैंने की ये निशानी थी ना, कि अल्लाह सुबहाना तआला कहते हैं जो कौम सुनेगी, किस चीज़ को सुनना है, अल्लाह की बात को सुनना है, उसको इसमें निशानी मिलेगी। गौर किया करें, रात कैसे आ गई, किसने इसको छुपाया, ये दिन कैसे आ रहा है, कौन इतनी बड़ी अम्ब्रेला उठा रहा है। हमें ज़रा सा भी एक चीज़ उठा के दूसरी जगह ले जानी पड़े तो हम थक जाएं, लेकिन ये इस पे गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है कि इंसान अपने आप को ये सारी चीज़ों से मुतमईन करे और अल्लाह की इस कायनात पे गौर करे।
ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون